शांति। सबसे पहले आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। समय प्रति समय शिव बाबा ने हम सभी ब्रह्मावत्सों को बहुत सी शिक्षाओं से सुसज्जित किया है। अनेक प्रकार की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए हम सभी अपना ये ब्राह्मण जीवन जो है उसमें चल रहे हैं। उनमें से एक शिक्षा बाबा ने हम सभी को ये भी दी है कि हम सभी लौकिक और अलौकिक का संतुलन रख करके चलें। किसी क्लास में मैंने सुना था कि लौकिक से अलौकिक में आने के लिए हर एक ब्राह्मण को एक पुल को पार करना होता है और उस पुल का नाम है रूहानियत का। बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो आने के बाद हमें वो आत्मा का रियलाइजेशन देते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको आपस में एक दूसरे के साथ आत्मिक दृष्टि से ही लेन देन करनी है, आत्मिक दृष्टि से ही आपस में व्यवहार में आना है, क्योंकि आत्मिक दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्य के समीप लेके जाता है, जबकि दैहिक दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से हमारे जीवन में रूहानियत की कला आती है। बाबा से मिले ज्ञान के आधार पर ही हमारा जीवन भी बदलता है और लोगों को जो हमारे जीवन में अंतर दिखाई देता है वो रूहानियत का ही है। दिन प्रतिदिन जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो धीरे धीरे रूहानियत की खुशबू हमारे जीवन में भरती जाती है। लेकिन यदि बाबा का बच्चा बनकर, ब्राह्मण बनकर हम दुनियावी लोगों के जैसा कर्तव्य करते हैं तो फिर प्रश्न जरूर उठता है। बाप दादा ने प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों के प्रति महावाक्य उचारे हुए हैं कि आप सभी एक एक जो भी परिवार में रहने वाले मेरे बच्चे हैं, आपके जीवन से पवित्रता की खुशबू सबको आनी चाहिए। जैसे अगरबत्ती की खुशबू दूर दूर तक फैलकर वातावरण को सुगंधित करती है, ऐसे ही आपके जीवन से भी, आपके परिवार से भी पवित्रता की खुशबू, रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैले, तभी कहेंगे पवित्र प्रवृत्ति। जैसे मंदिर का वातावरण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही आपके जीवन में रूहानियत की खुशबू सबको आपकी ओर आकर्षित करे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सभी परमार्थ और व्यवहार दोनों के संतुलन को अपना करके चले। संतुलन का मतलब अक्सर करके तो हम यही समझते हैं कि संतुलन मींस बराबर, ये भी ठीक है, लेकिन संतुलन का एक मतलब और होता है और वो है जितना आवश्यक है बस उतना ही। जैसे कि जब सब्जी बनाई जाती है तो सब्जी में सभी मसाले बराबर की मात्रा में नहीं डाले जाते, जितने मसाले की आवश्यकता जितनी है बस उतना ही डाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में बैलेंस बना के चलना होता है। कभी कभी हम अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों को निभाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि हमारा परमार्थ की ओर, आध्यात्मिकता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और कभी कभी इसके विपरीत भी होता है, जब हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम इस ओर इतना झुक जाते हैं कि हम अपने लौकिक परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे फर्ज हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो यहां पर हमें संतुलन बना के रखने की आवश्यकता होती है। कई बार हम ईश्वरीय ज्ञान में जब चलते हैं तो इतने अधिक टाइट हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि जब हम अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाते हैं ना, और उनकी बुद्धि में जब ज्ञान नहीं बैठता तो हम उन्हें अपना नहीं समझते, हम उनसे नफरत करने लगते हैं, अपने आप को हम ऊंच और उनको निम्न समझते लगते हैं। और दूसरी ओर या तो हम बिल्कुल ही उनके जैसा बन जाते हैं, ज्ञान और योग को बिल्कुल भूलकर उनके जैसा बन जाते हैं। जब परिवार, क्योंकि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है ना, बाबा अक्सर कहते हैं बच्चे आपके जीवन से ही दूसरों को ज्ञान मिलना चाहिए, आपको दूसरों को ज्ञान ना देना पड़े, आपका जीवन बोले। और अगर आपके जीवन से दूसरों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये होता है कि आपका परिवार पूरा ही आपका सहयोगी होता है। क्योंकि बाबा का जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे परिवार के अंदर सुख लेके आता है, संतोष लेके आता है, शांति का वातावरण बनाता है। लेकिन अगर, क्योंकि बाबा ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि परिवार में विषमता बढ़े या आपस में एक दूसरे के साथ दूरियां बढ़े, अगर कहीं मेरे ज्ञान मार्ग में चलने के बाद भी परिवार के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, अशांति का माहौल हो रहा है, तो हमें चेक करने की आवश्यकता है कि जरूर कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर ज्ञान को समझने में और ज्ञान को सही रीति से अपने जीवन में ग्रहण करने में कमी है। जब परिवार वालों को लगता है कि हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके मुख से कई बार निकल ही जाता है कि आप ब्रह्मा कुमारी ने यही ही सिखाया है। और एक तरफ अगर हम बिल्कुल ही उनके जैसा बन जाते हैं, उनके जैसा ही हंसना, बहलना, बातचीत करना, सोचना, ज्ञान योग बिल्कुल दांव पे लगा देना, तो तब भी वो कहते हैं, उनको लगता है कि हमारे में और उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो हमारे ही जैसे हैं, जाते तो रोज है सेंटर पर लेकिन जीवन तो इनका बिल्कुल पहले जैसा ही है, गुस्सा तो इनका गया ही नहीं है, आदतें तो सारी वैसी ही हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे आप नंबर वन आके दिखाओ, और हम सब चाहते भी हैं कि हम सभी नंबर वन में जाएं, लेकिन नंबर वन में जाने के लिए जरूरी है कि हम सभी अपने लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में संतुलन को अपना करके चलें, क्योंकि ये संतुलन ही हमारे परिवार वालों की जो है वो सेवा करता है। बाबा ने बहुत सुंदर हमारे सामने उदाहरण रखा है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। बाबा कहते हैं बच्चे नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। अगर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि कितनी उनके अंदर आकर्षण है, कितनी सुंदरता, कितनी दिव्यता, कितनी रूहानियत है। इस कलयुग के वातावरण में भी जो उनको प्रभा मंडल दिया है, ये उनकी रूहानियत की ताकत को ही दर्शाता है। जरूर उनके जीवन में संतुलन रहा। बाबा हमें बताते हैं कि इस पद को प्राप्त करने से पहले लौकिक में रहते भी उनका स्वयं पर अटेंशन रहा, प्रवृत्ति में रहते भी अपनी वृत्ति पर उनका अटेंशन रहा, तभी तो उन्हें ये प्रभा मंडल प्राप्त हुआ। और उनके रूहानियत के आधार पर ही भक्ति मार्ग में आज तक भी सभी भक्त उनके दर्शन करने के लिए मंदिरों में दौड़े दौड़े जाते हैं। हम सभी के जीवन में भी ऐसा ही संतुलन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी अपने नियमों को, मर्यादाओं को के साथ समझौता करें। हमें उन मर्यादाओं नियमों के साथ समझौता नहीं करना, और ना उनको अपनाते हुए इस जीवन में हमें आगे चलते जाना है। कई बार भाई बहने जो सेवा केंद्र पर आते हैं वो ये कहते हैं कि हम दोनों तरफ नहीं निभा सकते, बड़ा मुश्किल है। और कई तो यहां तक भी कह देते हैं कि पहले कहाँ थे आप, हमें शादी से पहले ज्ञान दे दिया होता। और कोई तो ये भी कह देते हैं कि हमें तो सेंटर पर ही रख लो, हमसे नहीं निभता ऐसा। लेकिन बाप दादा ने तो जो परिवार में रहने वाले भाई बहने हैं उनको बहुत सुंदर स्वमान दे करके उनकी महानताओं को दर्शाया है। अगर हम याद करें तो बाबा ने कहा है कि आप मेरे प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे संसार के लोगों के सामने मेरे शो केस के शो पीस हो। बाबा ने यह भी कहा है कि आप मेरे कमल आसनधारी बच्चे हो। बाबा ये भी कहते हैं कि आप वो हो जो अपने घर परिवार में रहते हुए भी सेंटर पर जो रहने वाले समर्पित बच्चे हैं उनसे भी पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हो। बाबा ये भी कहते हैं कि आप मेरे वो बच्चे हो जिन्होंने सन्यासियों को भी चैलेंज किया है और उनको भी आपने झुका के दिखाना है। तो बाबा ने कभी ये तो कहा ही नहीं कि आप अपनी रचना रचने के बाद घर परिवार को छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। बाबा ने तो हमेशा ही यही कहा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ। कमल पुष्प सम हम अपने परिवार में रह सकें, ये जो हम पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं ना, ये उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। हम रहें जरूर परिवार में कमल पुष्प की तरह, लेकिन इस संसार का वातावरण, इस संसार का आकर्षण, इन सब बातों से हम ऊपर उठ के रहें, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ से उठ के रहता है। बड़ा सुंदर गुलाब का पुष्प है जो हमें उदाहरण बहुत सुंदर एक शिक्षा देता है। गुलाब का फूल कभी नहीं कहता कि मेरे चारों ओर कांटे हैं, मैं नहीं खिलूंगा, मैं खुशबू नहीं दूंगा। वो फिर भी खिलता और अपनी खुशबू भी चारों ओर फैलाता है। ऐसे ही हमें भी जिस भी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ हम रह रहे हैं, उन सबके बीच में रहते हुए भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हुए बाबा की बताई जीवन में शिक्षाओं को अपनाते हुए हमें अपना जीवन ऐसा बना के चलना है। ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमें मुश्किल कहां पर आती है? हम क्यों नहीं अपने लौकिक और अलौकिक का संतुलन रख पाते? क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगी यहां पर कुछ एक ऐसी बाबा की बताई हुई धारणाएं हैं जिनको लेकर के ही हमारे परिवार में जो है वो माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि बाबा ने बताया कि आप सबको अपने जीवन में भोजन शुद्धि का नियम अपना के चलना है। तो जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं हम अपने साथ साथ ये चाहते हैं कि हमारा परिवार भी इस नियम को अपना करके चले। और इसी बात को लेकर के फिर घर में कई बार तनाव का माहौल बन जाता है। अब मान लीजिए किसी को शुगर है और वो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है, डॉक्टर तो उसी को कहेगा ना कि आपने मीठा नहीं खाना, और वो ये सोचे कि मैं अपने सारे परिवार वालों को बोलूं कि वो भी मीठा ना खाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां तक भी रात भी किसी से बात हो रही थी ऐसे ही, तो वो बहन बता रहे थे कि उनके वहां पे एक युगल ऐसे आते हैं कि वो उन्होंने इतना अपने परिवार में स्टिकनेस रखी हुई है कि जिस बर्तन से वो जिसमें पानी भर के उन्होंने अपने रखा है ना, उनके बच्चे उसमें से पानी नहीं पी सकते, इतना ज्यादा। केवल एक यही बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि जब कभी ऐसी बात आ जाती है कि हम बीमार हैं तब भी तो हमारा परिवार ही हमें सहयोग देता है ना, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए दवाई वगैरह का प्रबंध करता है। लेकिन अगर हम शुरू से ही ये चीजों का ध्यान रख के नहीं चलते तो फिर परिवार वाले हमारे विपरीत भी हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे हमें पता है कि हम सभी जिस तरह का जीवन अपना रहे हैं हमारा स्वच्छता की ओर भी ध्यान है, तो हमने तो इतना भी देखा है कि कई बार जो उनके बिस्तर पर उनके बच्चे भी आके बैठ जाएं या बेटा भी आके प्यार से बैठ जाए तो वो उनके साथ भी ठीक बिहेव नहीं करते हैं। बेडशीट वो कहते हैं अब धोनी पड़े, उन्हीं को सामने बोल देते हैं, साफ साफ उनको सब कुछ कहते हैं। बाबा ने ये तो कहा ही नहीं है ना, शूद्र कहीं के। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार जो ज्ञान में चलने वाले भाई बहने हैं वो अपने परिवार वालों को जब सेवा केंद्र पर लेके आते हैं ना तो बहनों से मिलाते हैं, सारा कुछ वो बता देते हैं। उसके बाद बहनें जब परिवार वालों से मिल रही होती हैं, उनको पूछ रही होते हैं कि आप कैसे हो, सेंटर पे जाते हो, अभी बहन की बात पूरी भी नहीं होती, वो पहले बोल देंगे बहन जी ये तो अज्ञानी है बिल्कुल। तो उनको वो बात तकलीफ देती है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे ही हम सभी ज्ञान मार्ग में चलते हैं, लेकिन परिवार वाले अभी भी भक्ति मार्ग में हैं, उनकी तो अभी भी वही श्रद्धा है, अभी भी वही भावना है देवी देवताओं को लेकर के। तो कभी जब वो कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं घर में कि उन्होंने कोई सत्संग रखा है, कोई कीर्तन रखा है, तो बहुत भाई बहने जो ज्ञान में चलते हैं उनके उन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये भी सर्विस नहीं है। हमें ये बात ध्यान पे रखनी होगी कि हम इसलिए थोड़ी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम उनके जैसा ही बन जाएंगे, लेकिन हम इसलिए इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ ताकि उनको भी लगे कि हमारी भी उनके जैसी ही श्रद्धा है, उनके जैसी ही भावना है। हमें पता है कि हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तालमेल आपसी अच्छा बनाना, बाबा ये भी तो कहते हैं। कई बार मंदिर में जाते हैं तो वहां पे ना तो माथा झुकाएंगे देवी देवताओं के आगे, ना ही सिर पर कपड़ा रखेंगे, तो इतनी इतनी बातें भी बहुत नोटिस करते हैं। क्योंकि मुझे जब ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो एक बार जन्माष्टमी के दौरान या वैसे भी किसी परिवार के साथ दो तीन बार जाना हुआ मंदिर में, तो मैंने उनको देखा, मेरा ध्यान गया कि ये कहीं पर भी ना माथा झुकाते हैं ना ही वो सिर ढकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, पर्सनली पूछा, वो चीज ना मुझे बहुत ज्यादा अंदर से लग रही थी क्योंकि मेरी तो बहुत भावना थी। तो उन्होंने कहा कि क्या है, हम तो इनके जैसा ही बनने, हम इनके जैसे ही तो हैं। तो मुझे ये चीजें थोड़ा लगती थी कि ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन ये बड़ा मेरा बड़ा भाग्य रहा कि उन्हीं के माध्यम से ही मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको भी ऐसा माध्यम बन जाएंगे कि किसी का ऐसा जीवन बन जाएगा। लेकिन बड़े दादी जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर बात को कहने की, हर एक बात को पूछने की एक समय होता है। बड़े दादी जी भी अगर कभी जाते थे ना मंदिर में, हमने सुना है, तो वो भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के आगे हाथ जरूर जोड़ते थे। इवन भले ही बाबा कहते हैं, हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भले ही दान जो है वो पात्र को देख करके दो, तो इसलिए कई ब्राह्मण, अभी हम आबू में आते हैं ना जैसे, तो कहीं भी हम जाते हैं साइड सीन के लिए भाई बहनों को लेकर के, तो वो मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं ना, वो हमारे प्रति उनकी इतनी अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे ही बड़े दादी जी को भी ये बात पता चली थी, तो दादी ने तो फिर भी उनके सामने ही जो है दान पात्र में दान दिया, और किसी बहन के बहुत संकल्प चले तो, तो दादी ने कहा कि भावनाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है ना किसी की भी, क्योंकि हम सब जो भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन से दूसरों की सेवा हो। बाबा ने जो कहा ना आपका जीवन बोले, वो इसलिए कि बाबा ने जो बात हमें कही है वो गुण, वो धारणाएं हमारे जीवन से दूसरों की सेवा कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, दूसरे हमारी धारणाओं को लेकर के, बाबा की शिक्षाओं को लेकर के और ही दूर हो रहे हैं, तो हम ये तो सेवा कर ही नहीं रहे ना। तो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। लेकिन बहुत बार भाई बहने ना इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए इतने नशे में आ जाते हैं, इतने नशे में कि अपने परिवार वालों के साथ ना बैठना ही व्यर्थ समझते हैं, उनके साथ अपनत्व के धागे को काट देते हैं। उनके साथ अपनत्व के धागे को जब हम काट देंगे तो वो हमें कभी भी सहयोग नहीं देंगे। अपने परिवार में रहते हुए हमें अपनी वाणी पर, अपनी कर्मणा पर इतना अटेंशन देना है, इतना टेंशन कि चलो वो ज्ञान में ना चलें, लेकिन कम से कम वो हमारे विपरीत ना हो, हमारे विरोधी तो ना बने, हमें सहयोग तो दें। नहीं, बाबा के घर में देखो हर प्रकार के बच्चे आते हैं। आपने जो कहा, बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो इस ज्ञान को सही विधि से ना समझ करके अपने परिवार से बहुत दूरी भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी भाई बहने हैं जिन्होंने सचमुच बाबा को ज्ञान को समझा, उसको उस रीति से अपनाया और परिवार वालों को जोड़ा। मैं जरूर बताऊंगी कि एक युगल आते हैं वहां पे सेंटर पे, सबसे पहले बहन को ज्ञान मिला था और वो ज्ञान में चलने लगी, सब कुछ उसको समझ में आया, नियम मर्यादाएं भी, वो बहुत दिल से चाहती थी कि मैं बाबा से मिलन मनाऊं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये भी बात ध्यान में रखी कि ज्ञान मुझे मिला है, इनको ज्ञान नहीं मिला। और जीवन में एक साथ उनको चलते हुए 20-25 वर्ष हो चुके हैं, अब एक को ज्ञान मिला है दूसरे को ज्ञान नहीं मिला, वो तो उसी रीति से ही उनके साथ उठेंगे भी बैठेंगे भी बातचीत भी करेंगे, ये भी कहेंगे हमारे साथ सिनेमा में चलो, ये भी कहेंगे बाहर शादी वगैरह में जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपनी वो वाली सारी बातें जो लगता था कि उनके जीवन साथी को अच्छी नहीं लगती उनको ठीक करना शुरू किया। अक्सर करके वो लेट नाइट घर में आते थे, वो क्या करती थी बहन की खाना बना के होटकेस में रख देती थी और सो जाती थी। वो आते थे अपने आप खाना खाया नहीं खाया सो गए और सुबह जो है बस ऐसे जल्दी जल्दी में वो चले जाते थे। उन्होंने ये चीज ठीक की, वो उनका इंतजार करते थे, उनके आने के बाद उनके लिए गरम गरम खाना उनके लिए परोसते थे, फिर वो कहीं पर भी जाने के लिए कहते थे, उनकी हर बात का ध्यान रखते थे वो कि उनको जो अच्छा लगता है मैंने वो सब करना है। उनको लगा टाइम, 3 साल लगभग लगे होंगे, लेकिन आज मैं अपने ज्ञान में चलने से पहले उनको देख रही हूँ कि दोनों ही बहुत अच्छी रीति से ज्ञान में चल रहे हैं और पूरा परिवार बहुत अच्छी सेवा करता है बाबा के घर में। हमारे बड़े दीदी जी आदरणीय सरला दीदी जी अपने परिवार में भाई बहनों से बड़े थे, माता जी की शायद जब डेथ हो गई थी तो उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी आई और सर्विस करते थे दी गवर्नमेंट जॉब थी, टीचर थे, तो पिताजी भी थोड़े टाइम के बाद शरीर छोड़ गए, लेकिन दीदी ने चाहते थे वो बाबा के घर में समर्पित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सर्विस की, उस कमाई से अपने भाई बहनों को पाला पोसा बड़ा किया। और सच में आज उनके भाई बहने ना उनका इतना रिगार्ड करते हैं, वो कहते हैं बहन जी हमारे ऊपर ना पवित्र कमाई लगी है इसलिए आज हम सेट हैं। तो ये विधि आनी चाहिए कि हम परिवार वालों को कैसे जोड़ के रख सकते हैं, कैसे उनको बाबा के प्रति भी, क्योंकि ये भी एक बहुत गहरी बात है कि हम कितनी श्रद्धा से और कितनी भावना से बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अपना करके चलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपको तोड़ निभा के चलना है, और तोड़ निभाने के भी दो अर्थ होते हैं, एक होता है कि अंत तक निभा करके चलना और दूसरा होता है कि मन की रगें जो पहले आपके परिवार वालों के साथ आपकी जुड़ी हुई थी उनको तोड़ करके उनके साथ निभा के चलना। कौन से वाला ठीक होगा, पहले नंबर का या दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का ठीक है कि निभाना भी है उनके साथ लेकिन मन की रगें भी उनके साथ ना जुड़ी हो, क्योंकि अगर हमारी मन की रगें उनके साथ जुड़ी हुई होंगी हम मोहवश उनकी पालना करेंगे तो हम कभी भी उनको शिक्षा नहीं दे सकते। हमें उनकी पालना करनी है, परवरिश करनी है, लेकिन बड़ी सरलता से निमित्त से बाबा की हर बात को ध्यान में रखते हुए। और यह भी कहा जाता है, कई बार क्लास में चर्चा होती है कि 5 केले रोज खाओ। 5 केले रोज कौन से खाने हैं? अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में बैठ अकेले बाबा को याद करना है। इतना सूक्ष्म अटेंशन हमारा अपने ऊपर चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ हमें सदा ये बात याद हो कि हमारा कोई भी साथी नहीं है। जैसा कि भाई साहब बहुत बार क्लास में कहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये शब्द कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर हर कोई अकेला है और जिसने पुरुषार्थ करना उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। सूर्य भाई साहब भी कहते हैं अगर कोई चाहे कि मैं योगी बनना चाहता हूं, महान तपस्वी बनना चाहता हूं, तो उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को अपनाते हुए, धारणाओं को अपनाते हुए लौकिक और अलौकिक का संतुलन रख के चल सकते हैं। और अंत में एक समय था ये बात कही जाती रही है कि लौकिक और अलौकिक का संतुलन बना के रखें, लेकिन अभी समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो हमें अपना स्वरूप इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अलौकिक की ओर ही लगाएं। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। अब से कुछ समय पहले तक तो अगर कभी भी परिवार में किसी की शादी वगैरह का प्रोग्राम है बुलाते थे तो जाते थे ईश्वरीय सौगात देने के लिए, लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी हम जब कभी वो पहले जाते थे लेकिन केवल 5-7 मिनट के लिए ईश्वरीय सौगात देने के लिए, चित्र देने चले गए या वो डिपेंड करता है। अगर कन्या की शादी है, अगर कन्या की शादी है तो हम जाते थे देने के लिए, लेकिन अगर भाई की है तो हम बाद में, अब नहीं है, अब से कुछ नहीं, बहनें पहले जाती थी अब नहीं जाती है। अब नहीं जाते हैं, क्योंकि हर एक का क्या है कि जैसे हमारी जो नहीं, वही वही सब डिपेंड करता है, जो कन्या होती है उसके तो डिपेंड करता है परिवार वालों के ऊपर कि वो आने देंगे कि नहीं। तो हम क्या कहते हैं उनको, आप अपने, वो अपने घर में सत्संग का प्रबंध करते हैं, अब तो हम सत्संग करने जाते हैं और उसी में ही कन्या को सौगात दे के भी आ जाते हैं। लेकिन जो भाई होते हैं उनको फिर कहा जाता है कि आप अपनी लक्ष्मी के साथ ही आना। नहीं अभी तो किसी तरह से नहीं, अब नहीं जाते, नहीं पहले जाते थे। नहीं शादी मीन्स ऐसे नहीं कि उनकी पूरी रीति रस्म में इन्वॉल्व हुए हैं, केवल जब वो बैठे हैं वहां जो उनकी स्टेज होती है उनको गिफ्ट देने, हाँ गिफ्ट दे के आएंगे। नहीं वो सेवा के भाव से ही जाना होता है, और तो कोई है ही नहीं कि भाई। नहीं अब नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं अब, तो वही है कि समय के अनुसार जाना चाहिए। वही तो बात है ना कि अगर आप उनके फंक्शंस में अलाउड नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जाके भी ध्यान रखना होता है कुछ कुछ चीजों का। हम शादी में जाए सीधा सीधा कह दे हम आएंगे तो जरूर पर हम खाएंगे कुछ नहीं, वो भी डिसर्विस है, वो नहीं जताना हमें कुछ भी ऐसा। हाँ लेकिन कई बड़े भोले होते हैं ना, वो पहले से ही लेकिन एक चीज बड़ी सूक्ष्म है कि हर तरह के भाई बहने सेंटर पे आते हैं। कई भाई बहने तो ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कहा भाई के बेटे की है या किसी की भी शादी है, तो वो ना कई दिन पहले से छुट्टियां शुरू उनकी, मुरली क्लास की, योग की, क्योंकि परिवार में फंक्शन है। लेकिन ऐसे भी भाई बहने देखे हैं कि अपने ही बच्चे की शादी है लेकिन तो भी वो नियमित रूप से ज्ञान योग करते हैं। तो ये हमारी अपनी धारणाओं पर निर्भर करता है, वही बात कि हमने कितनी श्रद्धा से और कितनी भावना से बाबा के ज्ञान को अपनाया है। आना चाहिए ना नहीं पते क्या होता है कि नहीं वो बात नहीं होती। अभी पीछे 3 साल पहले की ही बात है, अपने जो दीदी हैं उनकी ही लौकिक सिस्टर के युगल ने यहाँ पर बाबा से मिलने आए थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में उनको रेफर यहाँ से किया गया था, तो वहां उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन वो बहन ने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, इतनी बाबा की ज्ञान की बातों को अपनाया, वो इतना अच्छा अनुभव सुनाते हैं, अभी भी आए हुए हैं इस ग्रुप में। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारे परिवार वाले भी हमें समझ जाते हैं कि हम कितने अपने ज्ञान योग में पक्के हैं, मजबूत हैं। लेकिन कहीं पर उनको थोड़ा सा भी लगता है हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं, और फिर अचानक से हम उनको इस तरह से इग्नोर करते हैं तो गलत होता है, वरना तो उनको पता है कि ये रेगुलर जाने वाले ही हैं। ये डिपेंड करता है भाई सब, उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो खाना चाहिए, क्योंकि फिर भी उनको लहसुन प्याज वाला नहीं, थोड़ा तो उनको उसमें भाई सब परिस्थितियां नहीं, ये तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम देखते हैं। हमारे यहाँ रिफाइनरी है, रिफाइनरी में नहीं, पानीपत में भी जो रिफाइनरी की सेवा शुरू हुई ना, हम वहां पे जाते हैं एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे, तो वहां पे जो बहन निमित्त बनी सेवा शुरू कराने के, उनके परिवार में भी सेम यही कंडीशन थी। तो भाई बहनों से भी हमें सीखने को बहुत मिलता है कि उनके जो युगल हैं वो उनको साथ देते थे, लेकिन जो परिवार है वो इस तरह का सब तरह का भोजन खाता है। लेकिन वो सारी वही बात है कि बाबा ने जो कुछ सिखाया है, जो बताया है, वो जो हम ज्ञान ले रहे हैं उनके लिए है। हम ये ना सोचे कि हम वो सारी बातें अपने परिवार वालों पर लागू कर देंगे। वैसे तो ये क्वेश्चंस तो हम जितने भी करें इसका कहीं एंड ही नहीं है। वास्तव में तो क्या होता है, हर एक की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी पर कई बार दो परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, लेकिन किसी को कुछ जवाब, किसी को कुछ जवाब। जैसे भाई साहब रमेश भाई साहब और ब्रिजमोहन भाई साहब का उदाहरण हमने सुना ही है कि एक को बाबा ने चाय के लिए हाँ की, एक को ना की। तो वो डिपेंड करता है कि भाई हर एक की सर्कमस्टांसेस कैसी है पूरा आप दो तो भाई सब जवाब ज्यादा अच्छा है जो मेरे जब मैं ज्ञान में आई थी तो जैसे मेरे सामने भी ये बात थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। मम्मी ने तो समझ लिया था कि भाई ठीक है मैं अपने आप, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, टाइम ही नहीं होता था, पर बाबा का ज्ञान मिला तो समझ आई। पापा भी नहीं थे, जबकि पापा की तो पहले ही डेथ हो गई थी ज्ञान मिलने से। तो लेकिन फिर भी जो मेरा जो अच्छे से बातचीत करने का रहा है ना, शुरू से ही अपने मासी के साथ रहा है, मम्मी के साथ मैंने कभी इतनी खुल के बात ही नहीं की। और उन्हीं दिनों मुझे टीबी की प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैं एक बार उनके यहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे वैसे पूछ लिया कि आपके यहाँ पे मना करते क्यों हैं इस तरह से, आप पवित्र के हाथ का नहीं खाना, ऐसे नहीं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा, वो कहते हम कोई अछूत हैं, बचपन से लेके तो आज तक मेरे हाथ का खाती थी, क्या के भी बनवाती थी, अभी एकदम से क्या हो गया। हाँ, तो मैंने उनको साफ से, मतलब बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, हमारा बस एक नियम है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, हम बस उन्हीं के हाथ का खा सकते हैं। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिस समय हम ज्ञान में चलते हैं ना, उन चीजों की हमें नॉलेज ही नहीं होती। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं थी, लगभग 16 वर्ष की उम्र में मुझे ज्ञान मिला था। तो बाबा कहते थे बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं। तो मेरे मन में ना क्वेश्चन चलता था, काम तो सारे ही करते हैं लेकिन मैं पूछूं किससे। वही सेंटर पे मैंने सुना है, तो मैं जहां जॉब करती थी वहां पे मैंने एक, वो किसी सत्संग में जाते थे, उन दीदी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी उनका पता नहीं होता, लेकिन हमें जब समझ में आती हैं तो उनको समझ करके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारी किसी भी बात से हमारे लौकिक परिवार वालों का अगर दिल टूटता है तो फिर दूरियां पैदा होती हैं, और जब दूरियां पैदा होती हैं तो फिर वो हमारे सामने बंधन डालना शुरू करते हैं। लेकिन जितने सच्चे मन से, साफ मन से हम बाबा के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं और बड़े प्यार से उस ज्ञान को अपनाने की पुरुषार्थ में लगते हैं, तो बाबा भी मदद करते हैं। और आप तो फिर भी अपने हाथ से बना ही सकते हैं। शांति।
प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया, सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग तन है यहाँ मेरा मन है वतन उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग प्रभु प्रेम किए किरणों से गदगद हो रहा है अंग अंग अब पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से जो प्यार मिला मुझे तुमसे